चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया।
चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया।
थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकाल दर्शी।
वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकाल दर्शी।
जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती, आंखों का बना लिया।
पलकों से उठा कर मोती, आंखों का बना लिया।
थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया।
आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया,
आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगा कर जी करता है उड़ जाऊं।
खुशियों के पंख लगा कर जी करता है उड़ जाऊं।
प्रभु प्रेम के बादल बन कर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया।
सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया।
थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया।
आपका शुक्रिया,
आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया।
चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया।
थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया।
आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया,
आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया,
आपका
ओम शांति। प्यारे बाबा का दिल से हम सब शुक्रिया अदा करते रहते हैं, आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक, क्योंकि हर कदम में उनकी मदद का, उनके प्यार का, उनके आशीष का हम अनुभव करते हैं। और इसलिए भी दिल से बहुत शुक्रिया हमेशा ही निकलता, क्या थे बाबा ने क्या बना दिया, हमें अपना मददगार बना लिया। हम उनसे मदद मांगते थे लेकिन इस काबिल बनाया कि हम उन्हें मदद कर सके। और हमारी आदर्श ब्रह्मा बाबा, जिनके पद चिन्हों पर हमें चलना है, एक सुंदर सैंपल बाबा ने हमारे सामने रख दिया है कि बच्चे कॉपी करना तो आसान है ना, और कुछ मत करो, कॉपी करो, ब्रह्मा बाबा को सामने देखो। आज भी बाबा ने कहा सुबह, संकल्प में, बोल में, कर्म में बस बाबा को फॉलो करो तो जीवन श्रेष्ठ बनता चलेगा और हम सब बाबा के सुंदर जीवन प्रसंग, प्रभु लीला को सुनते आ रहे हैं और उनका आनंद ले रहे हैं। तो पुनः चलें कराची में, जहां बाबा पांच भवनों में रहने वाले यज्ञवत्सों की बहुत सुंदर पालना कर रहे थे, और यज्ञ सेवा स्वयं करके उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे अपने आप को ऑलराउंडर बनाना है। यद्यपि बाबा उम्र में बहुत बड़े थे तो बच्चों को लगता था कि बाबा आप ये मत करो, हम करेंगे ना, लेकिन बाबा यज्ञ सेवा में रुचि, यज्ञ स्नेह का प्रैक्टिकल पाठ बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। इसीलिए हर कार्य में, हर सेवा में आगे से आगे आकर हाथ बटाया करते थे। और बाबा ये भी कहते थे कि लौकिक कार्यों में भी अलौकिक स्मृति रहे, लौकिक कार्य करते हुए भी अलौकिकता भर देना, ये बाबा की बहुत बड़ी कला विशेषता रही जो बच्चों में उन्होंने भरी। बाबा जब चक्कर लगाते हुए भंडारे में जाते थे तो जो बहन भोजन बना रही होती थी उन्हें भी दृष्टि देते हुए बाबा कहते थे कि बच्ची, शिव बाबा की याद में स्थित होकर भोजन बनाओगी तो इस भोजन में भी शक्ति भर जाएगी। तो लौकिक कार्य है, स्थूल कार्य है, लेकिन वो कार्य करते हुए, वो सेवा करते हुए भी हमारी स्मृति श्रेष्ठ हो, हमारी स्मृति बाबा से जुड़ी हो, ये बाबा बच्चों का ध्यान दिलाते थे। मशीन पर कार्य करने वालों को बाबा कहते थे कि शिव बाबा को याद करते हुए अपने भविष्य के लिए सतयुग में राजाई पोशाक के भी अधिकारी बनो। तो सतयुग की याद, वहां भी हम कितने सुंदर वस्त्र पहनेंगे, जो कपड़े धो रहे होते थे वहां भी बाबा जाकर के स्मृति दिलाते कि बच्चे आत्मा को भी तुम्हें साथ साथ धोते रहना है। इस प्रकार बाबा स्थूल कार्य को भी बाबा की स्मृति के साथ जोड़कर बच्चों को योग युक्त रहने की प्रेरणा देते थे। और इस यज्ञ सेवा का महत्व क्या है, किसी को ये ना लगे कि ये क्या, हम अपना घर बार सब छोड़कर आ गए, अपनी महल माड़ियां छोड़कर आ गए, इतने विघ्नों का हमने सामना किया और बाबा यहाँ हमें छोटे छोटे कार्य करा रहे हैं। बाबा उन्हें यज्ञ सेवा जो वो कर रहे हैं उसका महत्व बताते थे कि मीठे बच्चे, यज्ञ सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। इस ईश्वरीय सेवा का अवसर किसी विरले भाग्यशाली को ही मिलता है, आप बहुत खुशनसीब हो, बहुत लकी स्टार हो। तो बाबा इस प्रकार जब स्मृति दिलाते थे तो ये छोटे छोटे जो कार्य दिखते हैं यद्यपि यज्ञ का तो एक छोटा सा कण भी हम यहां से उठाकर यहां रख देते हैं तो पद्मों के भाग्य के अधिकारी बन जाते हैं। किन बाबा इन कार्यों को करने वालों के अंदर यज्ञ सेवा के महत्व को बढ़ाते और साथ ही स्मृति स्वरूप होकर कर्म करने को प्रेरित करते थे। दादी निर्मल शांता जी इन्हीं सेवा से जुड़े हुए अपने अनुभव बताती हैं कि यज्ञ में हरेक यज्ञ वत्स को हर काम करना पड़ता था। बाबा कहते थे ना कहने वाला नास्तिक है, तो यदि किसी ने ना कह दिया तो वो नास्तिक, तो इसलिए कोई नास्तिक तो बनना नहीं चाहता था ना कि नहीं हम ना नहीं कहेंगे। हाँ तो एक बार बर्तन मांजने की ड्यूटी मेरी लगी, दादी कहती हैं निर्मल शांता दादी जी। बर्तन धो रही थी, उसमें से एक बड़ा पतीला, बड़ा आप जानते हैं मधुबन में आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े बर्तन होते हैं, बड़े पतीले जिसमें दाल आदि बनती है, तो वो भी धोना था बर्तन में, तो उसमें राख डाला और दादी उसी पतीले के अंदर घुस गई और उसे घूम घूम के साफ कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डांस कर रही है। मम्मा बाबा उधर से गुजर रहे थे तो बाबा ने कहा कि बच्ची पतीले के अंदर डांस कर रही हो, तो दादी ने कहा कि बाबा डांस नहीं कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ, क्योंकि आज बर्तन मांजने की ड्यूटी मेरी है। तो बाबा ने मम्मा से कहा कि बच्ची को बर्तन मांजने की ड्यूटी नहीं दीजिए, क्योंकि इनको दादी को बाबा ने इसलिए कहा क्योंकि दादी को दमे की तकलीफ थी। तो तब से दादी कहती हैं बर्तन मांजना छूटा, लेकिन ये भी एक यादगार चीज कि हर कार्य दमे की तकलीफ है, हम क्या सीखते चलें यज्ञ के इन सुंदर अपने बड़ों अपने पूर्वजों के अनुभव से कि भले दमे की तकलीफ है लेकिन ना नहीं, यज्ञ सेवा के लिए जो सेवा दी गई यज्ञ माता पिता के द्वारा निमित्त के द्वारा हाँ जी कहकर उसे स्वीकार किया। दादी के बारे में हम जानते हैं जिन्होंने कभी कुछ भी इस प्रकार के कार्य नहीं किए, राजकुमारी की तरह पले उन्हें बर्तन धोना हाँ जी बाबा ने कहा है, तो ना नहीं और साथ ही साथ अपनी तकलीफों को भी एक तरफ रखते हुए हम सीखते चलें कि कैसे बाबा ने कहा और हम करते हुए जब उसे आगे बढ़ते हैं तो बाबा की दृष्टि उनका वरदान हमें मिलता है। इतना ही नहीं दादी कहती मेरे निश्चय की भी परीक्षा हुई, क्योंकि दमे की तकलीफ दादी को थी और जन्म पत्री में ये था कि इनकी आयु केवल 25 से 30 वर्ष की है। तो उस समय ऐसा था यज्ञ में, दादी कहती हैं कि यदि कोई बीमार पड़ता था तो बाहर से डॉक्टर नहीं बुलाते थे, लेकिन कोई घरेलू दवाई कर लेते थे या संदेशी बहन ट्रांस में जाती थी और बाबा ऊपर से दवा सजेस्ट करते थे कि ये इनको कराओ। तो ब्रह्मा बाबा ने एक बार संदेशी को कहा कि जाओ ऑलमाइटी बाबा से पूछ कर आओ, क्योंकि बच्ची को बहुत दमे की तकलीफ रहती है। तो संदेश में ऑलमाइटी बाबा ने कहा कि ये बच्ची बर्फ के पानी से स्नान करेगी तो दमा चला जाएगा। बर्फ के पानी से दमा है, आप जानते हैं दमे की तकलीफ वाले, हाँ ठंडी में और वो बढ़ जाती है। तो बाबा ने संदेश भेजा कि यदि बच्ची बर्फ के पानी से स्नान करेगी तो दमा चला जाएगा। तो साकार बाबा ने पूछा मुझसे कि ऑलमाइटी बाबा ने ये संदेश भेजा है, क्या बर्फ के पानी से स्नान करोगी? तो मैंने झट कहा बाबा मीरा को जहर का प्याला पीने के लिए कहा तो वो अमृत हो गया, बाबा ने यदि मुझे बर्फ से स्नान करने के लिए कहा है तो मैं जरूर स्नान करूंगी। कितनी बड़ी बात है ना, कितना निश्चय। इतनी ठंडी पड़ रही है, -2 -3 में अभी हम यहां आबू में हैं, तो ठंडे पानी से कहे नहाओ ऐसा लगेगा, या पता है कि जिस चीज से बहुत तकलीफ होने वाली है वो करने को कहा जाए, एक बार मन में क्या संकल्प में आएगा कि ये क्या बात हुई। दादी ने झट कहा कितनी सुंदर निश्चय की बात, मीरा ने जहर का प्याला पिया अमृत हो गया, बाबा ने कहा है कल्याण होगा। जाके वॉशरूम में बैठ गए, बाजार से बर्फ लाकर बाल्टी में डाली गई, साकार बाबा ने फिर से एक बार संदेशी को भेजा कि जाओ एक बार फिर से पूछ करके आओ। तो ऑलमाइटी बाबा ने कहा संदेश यही है और बच्ची के दमे की दवा भी यही है। दोबारा ऑलमाइटी बाबा ने फिर से यही कहा। अब संदेशी तैयार हो गई, बाल्टी उठाई गई और जैसे ही संदेशी डालने वाली थी ठंडे ठंडे पानी को बर्फ के, तो डालते जैसे उसने हाथ उठाया ट्रांस में चली गई और ऑलमाइटी बाबा ने उसके हाथ को थाम लिया। और ऑलमाइटी बाबा ने संदेशी को कहा कि बाबा को बच्ची के निश्चय की परीक्षा लेनी थी, ले ले। और बच्ची पास हो गई। उसके बाद संदेशी मुझे बाबा के पास लेकर के गई कि तो ऑलमाइटी बाबा ने फिर कहा कि बच्ची को रोज एक सेव खाना है, उसके दमा रूपी जो देवता है वो चला जाएगा। कितनी प्यारी सी बात, दमा देवता जो है, एक सेव रोज खिलाओ चला जाएगा। ऊपर से दवा आ गई, निश्चय की परीक्षा में भी संपूर्ण पास। हम भी चेक करते चले ना, हमारा निश्चय इतना अटूट है, हमारा प्रेम इतना अटूट है बाबा से कि बाबा जो कहे तैयार। फिर बाबा ने इसका राज भी स्पष्ट किया संदेशी के माध्यम से कि बच्ची की परीक्षा इसलिए ली क्योंकि इस बच्ची की जन्म पत्री में उम्र कम थी। बाबा ने बताया कि मंदिर में एक बूढ़ी माता बहुत दुखी होकर के पुकार रहे थे कि भगवान मुझे बुला लो। तो बाबा ने उस बूढ़ी माता की आयु बच्ची को दे दी और उस आत्मा को मुक्ति दे दी। तो उसके सिर पे जो सफेद बाल थे उसकी निशानी बच्ची के भी सिर में आ गए। तभी 30 साल की उम्र में दादी कहती है मेरे बाल सफेद हो गए थे। प्रभु लीला, निश्चय की विजय और साथ ही जिस आत्मा ने मुक्ति मांगी उसे मुक्ति भी दी और दूसरी जो आत्मा जिससे अनेक आत्माओं को मुक्ति दिलानी थी उसे मुक्ति दाता बना दिया। कितना सुंदर प्रसंग, हम सबको भी बहुत गहराई से बाबा के एक एक महावाक्य पर ऐसे निश्चय रख करके आगे बढ़ना है। दादी आगे कहती हैं कि बाबा बहुत इकोनॉमी वाले भी थे, हमें इकोनॉमी का पाठ सिखाया करते थे। और वो कैसे, कोयले के जो छोटे छोटे महीन टुकड़े बच जाते थे उससे उसमें गोबर मिला करके गोले बनाते थे बाबा। पहले अंगीठियां होती थी, आप में से जो पुराने हैं जो आते थे वो जानते होंगे कि मधुबन में पहले अंगीठियां होती थी, कोयले उसमें रखे जाते थे और उसमें ही फिर भोजन बनता था। थोड़ी जो छोटी चीजें होती थी उसमें बनती थी, तो उसमें जो कोयले आते थे तो कोयले के जो चूरे बच जाते थे बाबा गोबर में मिला के उसके गोले बनाते थे। तो बाबा ये सिखाया करते थे क्योंकि हम सब बड़े घरों की थी, तो बाबा जानते थे कि ये गोले शायद ना बनाएं, इसीलिए बाबा खुद ही बैठ जाते थे। और जब बाबा बैठ जाते थे तो उनको देखकर लाजमी है कि बच्चे भी बैठ जाते थे कि बाबा बैठे हुए हैं इस प्रकार से कोयले के चूरे में गोबर मिला करके, हाँ, और उसके गोले बना रहे। तो सभी बच्चे कहते थे कि बाबा आप ये मत किया करो कि मान लो कोई मेहमान या जिज्ञासु आ जाएगा तो वो क्या देखेगा। तो बाबा नशे में कहते थे क्या देखेगा, तीन लोग देखेगा। ये नहीं देखेगा कि मैं गोबर में मेरे हाथ सने हुए हैं, नहीं, देखेगा तीन लोग। और सचमुच दादियां कहती हैं एक जिज्ञासु आया और जैसे ही बाबा ने उसे दृष्टि दी वो ध्यान में चला गया। इतना ही नहीं, कई छोटी छोटी बच्चियों को भी बाबा ऐसे उपले बनाते हुए या गोले बनाते हुए जब दृष्टि देते थे तो वो अशरीरी हो जाती थी, बैकुंठ में पहुंच जाती थी, साक्षात्कार करने लगती थी। सिखाया क्या बाबा ने, कर्म भले छोटा हो सामान्य हो लेकिन स्थिति श्रेष्ठ हो, ऊंच हो। बाबा कितने निरहंकारी थे, जो इतने ऊंचे थे इतने बड़े थे लेकिन निरहंकारिता से उन्होंने ये यज्ञ के छोटे छोटे जो कार्य हैं वो भी किए कराए और हमें ये सिखाया कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके और करेंगे। संतरी दादी जी भी अपना अनुभव सुनाती हैं बाबा के साथ के उन्हीं दिनों के। दादी कहती हैं कि मुझे अपेंडिक्स का दर्द उठा एक बार। डॉक्टर आया, उसने जैसे ही हाथ लगाया तो मेरे मुख से आह निकल गई। तो जब आह निकली तो बाबा ने कहा, तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं है जो दर्द सहन कर सको। कोई तुमको डांटे तो क्या करोगी, रोगी? अभी कभी ऐसे नहीं करना हो। दर्द हो आह, कि आह ना निकले, वाह निकले। बाबा ने हमें आह नहीं वाह सिखाया और ये तब से सिखाया, शुरू से। तो दादी कहती हैं, दुख में भी खुशी का आभास होना चाहिए, ये बाबा ने सिखाया। सहनशीलता का गुण धारण करना, ये बाबा ने सिखाया। और दादी कहती हैं आगे कि विश्व किशोर भाव जो संतरी दादी जी के युगल थे, वो भी ऐसी तकलीफ के समय ऐसा भी मुझे संकल्प नहीं आता था कि वो मेरे पास आए, बैठें, कुछ पूछें, कहें। जबकि वो नीचे उसी मकान में नीचे रहा करते थे और दादी कहती हैं मैं ऊपर रहा करती थी बाबा के साथ। तो कितनी ज्यादा डिटैच और अनासक्त स्थिति, जो हम पहले भी सुनाए हैं कि बाबा ने बहुत आत्मिक भाव भरा इन सब में, आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, भगवान के बच्चे हो। भले ये युगल थे, बच्चे थे, माता थे, पिता थे, लेकिन ये कोई भाव नहीं, तकलीफ में कोई लौकिक संबंध ही नहीं, बाबा ही याद आए, ये बात भी पक्का कराई और सहनशीलता की मूर्ति बना दिया। आह नहीं, वाह। और आगे दादी एक और बहुत प्यारा अनुभव शेयर करती हैं कि इन्हें भी दमा की तकलीफ थी दादी को, और एक बार इन्हें पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ। तो दादी को यह पक्का था कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी क्योंकि अविनाशी हॉस्पिटल में बैठी हूं और बाबा भी यहां बैठा हुआ है। दर्द इतना था कि खड़ी नहीं हो सकती थी, चल नहीं सकते थे। अब बाबा को बहुत ही स्नेह था, ओना था कि बच्चे हैं, बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो दादी बताती हैं कि बाबा 1 बजे उठकर बैठ गए, 4 बजे तक योग करते रहे। मैंने देखा बाबा को कि बाबा बैठे हुए हैं, वैसे भी बाबा जागते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, तो मुझे लगा कि बाबा ऐसे ही लिखने पढ़ने के लिए जागे होंगे। 4 बजे तक बाबा बहुत शक्तिशाली योग करते रहे, और जब बाबा योग कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पेट में कुछ कटाकुटी हो रही है, कुछ फीलिंग आ रही थी। 4 बजे बाबा आकर के मेरे सामने खड़े हुए, पूछा, बच्ची कैसी हो? तो दादी ने कहा, संतरी दादी जी ने, कि बाबा मेरे अंदर ना पेट में कुछ कटाकुटी सी चल रही है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो बाबा ने कहा, अच्छा खड़ी हो जाओ और चलो। तो जो खड़ी नहीं हो पा रही थी, दर्द से करा रही थी, बाबा ने कहा, तो दादी खड़ी हुई और चलने लगी। और दादी कहती, एकदम दर्द बंद हो गया, खत्म हो गया, जैसे कि मेरा ऑपरेशन हो गया। तो 1 से 4 बजे तक बैठ करके बाबा शक्तिशाली योग करते हुए शिव बाबा की स्मृति में जैसे सूक्ष्म में ऑपरेशन कर रहे थे। हम बाबा को ऐसे ही सुप्रीम सर्जन थोड़ी कहते हैं। जब कोई कार्य करता है, यद्यपि ये बात और है कि आत्मा की सर्जरी होती है, लेकिन देह की भी बाबा ने सर्जरी कर दी, देह को भी जैसे तकलीफ से मुक्त कर दिया। हमारे पास कभी भी ऐसी तकलीफ होती है, हम बाबा को ऐसे प्यार से, जैसे दादी ने लगन से, निष्ठा से, विश्वास के साथ, अपनत्व से याद किया, हम भी बाबा की ऐसी याद से अपने आप को रोगों से मुक्त कर सकते हैं ना। तो सुप्रीम सर्जन बाबा की कितनी सुंदर लीला कि कटाकुटी की फीलिंग हो रही है और योग में बाबा जैसे मुक्त कर रहे हैं उनके अंदर की तकलीफों से उन्हें। एक और प्यारा सा अनुभव कितने प्यारे प्यारे भागवत कथा ही तो हम सुन रहे हैं ना, भगवत लीला सुन रहे हैं कि प्रभु ने कैसी कैसी सुंदर लीलाएं दिखाई हैं, और ये लीला हम सब अपने पूर्वजों के अनुभव के आंखों से देख रहे हैं। सभी देखें भी इस दृश्य को। दादी कहती हैं कि एक बार साकार बाबा ने मुझे शिव बाबा के पास विशेष किसी बात की श्रीमत लेने के लिए भेजा। संतरी दादी जी जो कि उनके साथ रहकर बाबा को जो भी यज्ञ से जुड़ी हुई कभी भी संदेश की जरूरत होती थी, आवश्यक बातें होती थी, बाबा संतरी दादी को बाबा के पास भेजते थे। तो बाबा ने दादी को कहा कि बाबा के पास जाओ, और कुछ विशेष बात थी जिसके लिए संदेश लाना था। तो संतरी दादी जी का ये नियम था कि वो शिव बाबा के पास कभी भी खाली नहीं जाती थीं। जब भी योग में बैठती थीं, संदेश के लिए जाती थीं, जरूर कुछ ना कुछ भोग कुछ टोली लेकर के जाती थीं। उस दिन बाबा ने अचानक प्रोग्राम दिया था, तो कुछ ऐसा था नहीं, तो किचन से एक प्लेट में दादी 8-10 दाने इलायची और 10-15 दाने मिश्री के लेकर के आई, और उसे रुमाल से ढक करके संदेश लेने के लिए वतन की ओर चले। अब दादी ऊपर गई तो बाबा स्वयं ही शिव बाबा अवतरित हो गए दादी के तन में। अब जब बाबा को सारे दैवी परिवार ने देखा कि बाबा आए हैं, तो सभी इकट्ठे हो गए। बाबा ने मुरली चलाई। अब मुरली चलाने के बाद सबने कहा बाबा टोली भी दीजिए, क्योंकि बाबा की बोली के साथ सबकी टोली, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बाबा टोली भी खिलाओ सबने कहा। लेकिन अनौपचारिक पधरावणी थी, तो कोई पूर्व तैयारी तो टोली की थी नहीं। सामने मेज पर दादी ने जो 8-10 दाने इलायची और 10-15 दाने मिश्री के रखे हुए थे, बाबा ने उस रुमाल के अंदर हाथ डाला और उसमें से मुट्ठी भर भर के जो भी 300-400 भाई बहने थे, उन सभी को मिश्री और इलायची मुट्ठी भर भर के दी। 300-400 भाई बहने मुट्ठी भर भर के इलायची और मिश्री थे। कितने दाने? थोड़े से दाने। एक बहन ने कहा कि बाबा मैं आपकी मदद करूं, तो शिव बाबा ने मना कर दिया, नहीं मैं दूंगा। और बाबा ने सबको मुट्ठी भर भर के दी, और दादी जब वापस आई तो देखा कि जितनी इलायची और मिश्री प्लेट पे रखी हुई थी, उतनी ही इलायची और मिश्री रखी हुई है। कितनी अलौकिक लीला है। ईश्वर परमात्मा क्या नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे चमत्कार बाबा नहीं करते, वो इसलिए क्योंकि भौतिकता में ध्यान ना चला जाए हम सबका। जिन्होंने मुट्ठी भर भर के मिश्री और इलायची दी, क्या वो मुट्ठी भर भर के सोने हीरे माणिक नहीं दे सकते थे? लेकिन बाबा ने शुरू से ही बच्चे चमत्कार नहीं, क्योंकि नहीं तो कोई अपने बच्चे को ले आता कि बाबा इसकी बीमारी ठीक कर दो, बाबा ये गरीब है ये कर दो। बाबा तो कुछ और चाहते थे। और आज लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन ऐसी भी जादूगरी, ऐसे भी सुंदर चमत्कार बाबा ने दिखाए हैं, जो हमारे विश्वास को, निश्चय को और दृढ़ करने वाले हैं कि वो कौन है, वो क्या नहीं कर सकते। उनका एक संकल्प ही पूरी सृष्टि को बदल सकता है, उनका एक संकल्प ही इस नर्क को स्वर्ग बना सकता है। लेकिन उन्होंने हम सब बच्चों को अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का सुंदर अवसर दिया है। इसीलिए तो हम लोगों ने शुक्रिया से ही शुरुआत की ना, कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें अवसर दिया। विश्व रतन दादाजी भी अपना अनुभव शेयर करते हैं कि कुंज भवन में जो बहने रहती थी, उनमें से बहुत सारी साक्षात्कार में जाया करते थे। तो एक बार एक बहन जब सूक्ष्मतन में गई, तो उन्हें वहां एक बोर्ड दिखाई दिया, और उस बोर्ड में सभी जो यज्ञवत थे उस समय, उनके व्यक्त नाम और उसके सामने उनका अव्यक्त नाम बोर्ड में लिख करके बाबा ने दिखाया। संदेशी ने इशारे में ही इशारा किया, तो सबने समझ लिया आसपास की बहनों ने कि ये कागज और पेन मांग रहे हैं। उन्हें दिया गया, तो उन्होंने सबका व्यक्त नाम और अव्यक्त नाम उस कागज में लिखा। ब्रह्मा बाबा को बताया गया तो बाबा ने भी एक बड़े से बोर्ड पे सबके व्यक्त और अव्यक्त नाम लिखे और कहा कि आज से सभी को, बाबा ने कहा कि आज से सभी अपने अव्यक्त नाम से ही जाने जाएं, अव्यक्त नाम से ही सभी को पुकारा जाए। आज भी वो सारे नाम जो बाबा ने भेजे थे वतन से, वो सारे नाम अभी भी हैं। तो कितने सुंदर एक बात ना, बाबा ने ऊपर से सभी बच्चों के नाम भेजे कि कौन किस नाम से पुकारा जाएगा। दादा कहते हैं कि बाबा ने मुझे विश्वरत्न नाम दिया। आप सोचे वो दृश्य कैसा होगा, बाबा ने बोर्ड पे लिखवा के रखा होगा, सब बच्चे वहां पे बोर्ड में, जैसे नहीं एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट निकलता है तो सब बोर्ड के पास, तो वैसे सब बच्चे भी देख रहे होंगे ना कि हाँ मेरा क्या नाम बाबा ने भेजा, मेरा क्या नाम बाबा ने भेजा। कितनी सुंदर अलौकिक लीला और कितनी सुंदर अव्यक्त पालना, कितने सुंदर और सुहावने दिन जिन्हें हम भी सुनकर रोमांचित और आनंदित होते हैं। फिर दादा आगे कहते हैं कि झाड़ और गोला जो बनाने की सेवा है वो भी बाबा ने मुझसे कराई, क्योंकि बाबा हर रोज सवेरे कुंज भवन में जहाँ की बड़ी बहनें रहती थीं वहां आकर के मुरली चलाते थे, और हम सब भी जो बच्चे थे वो भी कुंज भवन में ही चले जाते थे सुबह मुरली सुनने के लिए। तो एक दिन बाबा आए और आते ही उन्होंने कहा कि आज जब मैं सूक्ष्म वतन गया तो वहां मुझे अव्यक्त बाबा ने एक बहुत सुंदर झाड़ दिखाया जो मनुष्यों का झाड़ था। तो बाबा ने कहा विश्वरतन को कहना कि इसकी डिजाइन बनावे। तो बाबा ने कहा मुझसे कि बच्चों ये डिजाइन बनाएंगे, तो मैंने कहा हाँ बाबा। बुद्धि बाबा की और उंगली मेरी चलने लगी। रोज बाबा डायरेक्शन देते थे कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, और बाबा ने फिर कहा कि देखो बच्चे 8 रत्नों की माला गाई हुई है ना, इसीलिए इस झाड़ के नीचे तुम 8 बच्चों के भी चित्र बनाओ लगाओ। तो इन्होंने कहा कि बाबा कौन से 8 नाम आप दीजिए, क्योंकि 300-400 भाई बहने हैं, किन 8 के मैं चित्र लगाऊं। तो बाबा ने कहा ठीक है मैं कल बताऊंगा। फिर बाबा ने संतरी दादी को भेजा ऊपर बाबा के पास कि बाबा से पूछ के आओ कि किन 8 के चित्र यहाँ लगाए जाएं। तो बाबा ने ऊपर से वो 8 नाम भेजे। आप सब देखते होंगे ना झाड़ को, झाड़ के नीचे बैठे हुए हमारे उन पूर्वजों को, तो बाबा ने ही ऊपर से उनके नाम भेजे थे, और उनमें से बाबा मम्मा के साथ जो नीचे बैठे हुए हैं झाड़ में, उनमें दीदी मनमोहनी जी, दादी प्रकाशमणि जी, दादी ब्रिजेंद्रा जी, ध्यानी दादी जी, शांतामणि दादी जी, दादी ब्रिज शांता जी, विश्व किशोर भाव और विश्वरतन दादा, ये 8 लोग हैं जो कि झाड़ में नीचे जिनके नाम बाबा ने ऊपर से भेजे थे। तो ऐसे बाबा बहुत सुंदर चित्र भी सेवा के लिए बनवाने लगे, ऐसी सुंदर अलौकिक रूप से सबकी पालना करते हुए बाबा सब को आगे से आगे बढ़ाते चलते रहे। हम सब भी उन दृश्यों को अपने जेहन में सव्यक्त मास में समाते चलें कि बाबा ने कैसे प्यार से पाला, उन्हें साकार में पाला और अब हमें अव्यक्त में पाल रहे हैं। अब भी बाबा के उस सामीप्य का, अब भी बाबा के उस प्यार का हम सुंदर अनुभव करते हुए, बाबा को अपनी आंखों के सामने रखते हुए, उनकी उन शिक्षाओं को जो शिक्षाएं बाबा ने इन सब यज्ञवत्सों को दी, उन्हें भी अपने जीवन में बहुत गहराई से शामिल करते हुए हम बाबा के प्यार का रिटर्न दें। चलें बाबा को शुक्रिया करेंगे योग में बैठकर, और आगे इस सुंदर भागवत कथा को सुनते रहेंगे। ओम शांति।
देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते, देखा है तुमको बाबा रूहों को प्यार करते, काटों को बनाया ज्ञान का पंख लगा कर उड़ना सिखाते देखा, ज्ञान का पंख लगा कर उड़ना सिखाते देखा, बच्चों को पकड़ के उंगली चलना सिखाते देखा, दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते,
प्रजा